मुश्किल अल्फाज की वजाहत। वयस अलूना का रूटवर्ड क्या है? सीन हमजा लाम सवाल करना, और काफ की जमीर जो है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। जिल करनैन, तो जिल करनैन, तो जी जो है ये जा, जू और जी तीनों तरह इस्तेमाल होता है ना। जू असल में होता है जू, जब तब होता है जब ये रफ़ई हालत में होता है, तो जब अन आ गया इससे पहले तो अन की वजह से जो जू था वो जी बन गया। अन किन हरूफ में से है? हरूफे जार में से है। शाबाश, वो हरूफ जो क्या करते हैं कि अपने बाद आने वाले इस्म के नीचे जो है वो जेर लगा देते हैं, तो इसने यानी हालत ही इसकी बदल दी, जू की बजाय ये जी हो गया। करनैन, कर्न, कर्न एक को कहते हैं और करनैन कितने को कहते हैं?
दो
कर्न। या नून, अलिफ नून जो है वो कसनीय का मानी जो है वो देता है, और कर्न अरबी जबान में सीन को भी कहते हैं और जमाना या दौर को भी कहते हैं। और ज़ुल्करनैन के लुग़वी मानी क्या है? दो सींगों वाला। इसका ये मानी नहीं कि इसके सर पर दो सींग मौजूद थे, क्योंकि इंसान था, और कहते हैं कि ये बहुत ही एक नामवर, अल्लाह से डरने वाला और मुनसिफ बादशाह गुजरा है। इक्तदार भी अल्लाह ने इसको दिया था और बड़ी वसी इसकी सल्तनत थी, तो गोया कि इसके सर पर दो सींग थे। इससे मुराद क्या है कि इसकी सल्तनत का इलाका कुछ ऐसा मालूम होता था जैसे एक मेंढा हो और इसके सर पर दो सींग हो। मतलब क्या कि इसके मफ्तूहा इलाके या सल्तनत का अगर कागज पर नक्शा बनाया जाए तो उसकी शक्ल एक मेंढे किसी बन जाती है कि जिसके सर पर दो सींग हो। तो बाज लोग इसलिए इसे जो थे वो ज़ुल्करनैन कहते थे, यानी दो सींगों वाला। और एक इसके मानी ये भी बयान किए जाते हैं कि ज़ुल्करनैन के ताज में दो कलगियां होती थी, जबकि आम बादशाहों के ताज में एक ही कलगी होती थी, और ये दो कलगियां भी इसकी सल्तनत की वुसअत के इजहार के लिए बनाई गई थी। तीसरी इसकी तौजीह ये की जाती है कि इसको दो दौर नसीब हुए थे, एक दौर फतुहात का और दूसरा दौर इन मफ्तूहा इलाकों में इंतजाम और हुक्मरानी करने का, तो इसलिए इसको ज़ुल्करनैन के नाम से जो है वो याद किया जाता है। और ये था कौन, इसके बारे में जो हमें नाम मिलते हैं वो जो है वो मुफस्सरीन कहते हैं कि कुरान ने जो इसकी खूबियां और जो इसके औसाफ बताए हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे सिकंदर आजम, लेकिन कहते हैं कि कदीम मुफस्सरीन ने सिकंदर आजम समझा, लेकिन ये ठीक नहीं है, बल्कि ज्यादातर मुफस्सरीन जो जदीद जमाने के हैं वो ये कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो खौरस, खसरू या साइरस, मतलब ये एक बादशाह है, तो कहते हैं कि ये था जिसका नाम खौरस, खसरू या साइरस, यानी ये एक ही नाम है जो जैसे वक्त हालात या लोगों के कहने के लिहाज से जो है वो बदला है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं सअतलू, सीन के मानी क्या है? अनकरीब, है ना, और अतलू जो है तिलावत करना, पढ़कर सुनाना। मक्कन्ना, मक्कन्ना जो है मीम काफ नून, इसके मानी है जब इख्तियार में मकाम या जगह का तस्वुर भी मौजूद हो, किसी को कुव्वत देना, इख्तियार देना। और सूरत यूसुफ में भी आप पढ़ चुकी कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बड़ी कुव्वत और इक्तदार से जो था वो नवाजा था। सबाबा, सबाबा जो है ये एक अहम लफ्ज है, और इस सिलसिले में ये लफ्ज जो है ये जरिया, रास्ता, रस्सी, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में अरबी लुगत में हर उस चीज को سبب کہتے ہیں جس سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد لی جائے، ہر وہ چیز سبب ہے، اس میں پھر آلات اور وسائل وہ مادی ہوں یا پھر معنوی ہوں، جیسے علم ہے، بصیرت ہے، تجربہ ہے، وہ سب بھی اس میں جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں سبب. اب آپ دیکھیں جیسے رسی ہے، تو رسی ایک ذریعہ ہے نا، ایک وسیلہ ہے نا، کہ آپ رسی کو باندھا سیڑھی کی طرح اور آپ اوپر چڑھ گئے، ایک سبب ہے نا. تو اسی طرح حصول مقصد کے لیے آپ جو ساز و سامان، جو وسائل، جو ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ سبب ہیں. راستہ بھی ایک رسی کی طرح ہے نا، کہ آپ اسے اپنی منزل تک یا مقصد تک جو ہے وہ پہنچے. تو آپ جب یہ سببہ کا لفظ پڑھیں گے قرآن میں بھی، تو کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ایک مہم پر چل پڑا، ایک راہ پر چل پڑا، ہے نا، اس نے ایک سبب اختیار کیا. تو آپ کے ذہن میں پھر سارے معنی اس کے جو ہیں وہ آ جائیں گے سبابہ. پھر ہے آیت 86 میں مغربہ، تو کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ غین رابا، غرب. اور غرب کسے کہتے ہیں؟ ڈوبنا. اور مغرب ڈوبنے کی جگہ، یہ ظرف مکان ہے ڈوبنے کی جگہ مغرب. اور اسی سے ایک پرندہ جو ہے نا وہ بھی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ غراب. آپ دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو یاد رکھنا نا، غراب. کوے کو کہتے ہیں کرو، اور کوا کیا ہے؟ وہ بھی جیسے ڈوبتا ہے جب سورج تو ہر طرف سیاہی اور کالک پھیل جاتی ہے، تو اسی طرح کوا بھی کالا سیاہ ہوتا ہے، دونوں میں ایک ریزیمبلنس موجود ہے. پھر ہے تغربو، تغربو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غین رابا. آئینن، آئینن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آئین یا نون. اور آنکھ کو بھی آئین کہتے ہیں اور چشمے کو بھی آئین کہتے ہیں، دونوں میں ریزیمبلنس کیا ہے؟ کہ جس طرح چشمہ خود پھوٹتا ہے، اس کے اندر سے پانی کا قطرہ قطرہ جو ہے وہ ٹپکتا ہے، تو آنکھ میں سے بھی آنسو جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ ٹپکتا ہے نا. چشمے تو پھوٹتے ہیں نا، تو آنکھوں سے جب آنسو بہنے لگتے ہیں، پھوٹ پڑتا ہے انسان، تو کوئی اس کو پھر روک نہیں سکتا. آپ کتنا چاہتے ہیں کہ اس وقت میرے آنسو نہ نکلیں، تو ٹپکنے لگتے ہیں نا. اور آنکھ کے اندر بھی عکس نظر آتا ہے، چشمے کے پانی میں بھی عکس نظر آتا ہے، ان میں بھی ایک جو ہے وہ ریزیمبلنس ہے. ہمیں آتین، اور ہمیں آتین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم حمزہ، یا پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، ہمائن مسنون آپ پڑھ چکی نا مٹی کے بارے میں. تو یہ ہمائن مٹی کی ایک حالت ہے. کیسی مٹی کو کہتے ہیں؟ سیاہ سڑا ہوا بدبودار کیچڑ. ایسی مٹی جو سیاہ ہو، سڑی بھی ہو، تو کیچڑ، دلدل، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یا ذوالقرنین، یا ذوالقرنین، تو ذوالقرنین جو ہے وہ یا بن گیا نا، یا حرف ندا ہے. پھر ہے جو ہے وہ آیت 87 کو دیکھیں تو نکرہ، اس کی فیملی سے ملتا جلتا ایک مشہور ہے، وہ بتائیں، منکر نکیر. منکر کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے اور نکیر کا بھی، سختی کرنے والے، سخت حساب لینے والے، ہے نا. اور انکار کرنا، یہ بھی اس میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے. تو نکرہ کی یہاں کیا معنی ہے؟ زیادہ سخت. اسی طرح یسرا آسانی کے لیے آتا ہے، لوگ یسر اور یسرا نام بھی رکھتے ہیں، اور دعا بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آسانی کر دے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اللہ تعالیٰ آسانی میرے لیے پیدا کر، میرے لیے سختی نہ پیدا کر، اور جو بھی میرا معاملہ ہے اس کو خیر پر اس کا خاتمہ کر دے. ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. آیت ہے 90 اور لفظ ہے متلیہ تو لام عین، نکلنا، خوشے کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی سے اطلاع بھی ہے. جیسے خوشے پھوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح کوئی بات پھوٹ پڑی، آپ نے وہ اطلاع دے دی. तो आपस में इनके अंदर रिसेम्बलेंस जरूर पाई जाती है, अगर आप उसको समझ लेना आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो पीछे आपने लफ्ज पढ़ा था हशीमन है ना, और हशीमन जो है उसके मानी क्या थे, चूरा चूरा। तो और मैंने आपको हाशिम के मानी भी बताए थे, तो मैं अभी पेपर कल लोगों के ऐसे ही लेटी भी पढ़ रही थी, जो बहनों ने कितने लोगों ने पेपर हल कर दिया आप में से। अच्छा अच्छा तो उसमें जो है वो मैं हाशिम, किसी ने हाशिम के मानी लिखे हुए थे कि चूरा करके और वो सब, फिर भी मतलब गो के उसके वो मानी बन सकते हैं, लेकिन हशीमन यानी चूरा चूरा वो औरत जो थी वो भूल गई हुई थी, लेकिन जो मैंने मिसाल दी ना वो उसको याद थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो इसको पूरे नंबर दे ही देने, इसने हाशिम के माने तो याद रखे ना। तो मैं ऐसे ही एक नजर जाते ही ना, जब पेपर तो आप लोग दे देते हैं तो उनको एक नजर सबको पढ़ती हूँ ना कि क्या बच्चों ने जो है वो लिखा है, कितना दिया मैंने इनको, कितना इन्होंने वापस किया, और कितना अमली जिंदगी में इंशाल्लाह ये इसको नाफिज करेंगे। तो बहरहाल कहीं कुछ तो याद रहेगा ना, मतलिया खोशे भी हैं निकलना भी है। फिर इसके बाद है दूनिहा, दून की खास बात क्या है, ज़विल इज़दाद से है, आगे पीछे ऊपर नीचे उधर या इधर है ना, परे वरे ये मुख्तलिफ मानी देता है दूनिहा। सितरा सीन तारा, सतर भी इसी से है ना, तो सतर क्या होता है, पर्दा, छुपी हुई चीज के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे अहम है अतबा है ना, तो अतबा ता बा ऐन पीछा करना, पीछे पीछे जो है वो चलना, पैरवी करना। आयत नंबर 93 में सदैनी, सदैनी सीन दाल दाल है ना, और इसके मानी है रोक के भी और रुकावट के भी। अच्छा अब आप देखें कि जो दीवार है वो भी तो रोक का काम करती है ना और रुकावट का करती है। दीवार के लिए आपने सूरत कहफ में क्या लफ्ज पढ़ा, जिदार, शाबाश, आपने उसके लिए जो है वो हाँ जिदार का लफ्ज जो है वो पढ़ा है, और जिदार किसे कहते हैं, दीवार को। अब हमने ये देखना है कि जिदार में और सद में क्या फर्क है, क्योंकि फर्क तो है ना, लेकिन दोनों में जो है तो क्या फर्क है, दोनों ही वैसे हैं तो दीवार ही, लेकिन ये कि जिदार से मुराद जो है वो आम दीवार है। अब देखें जिदार इसकी जमा है जुदुर, जुदरान भी आती है कभी कभी, मकान या किले की दीवारों में से कोई दीवार, किसी घर का जदर से घिर जाना है ना। तो अब आप देखें कि जिदार लफ्ज है, फिर सद है, तो सद कहते हैं रोक को और आड़ को, जो दो चीजों के दरमियान बड़ी सी दीवार, मजबूत दीवार यानी रोक का काम दे और उसको जो तामीर किया जाए। जैसे बाज लोग कहते हैं कि सुद्दा बन गया है उसके पेट में, आपने कभी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, सुद्दा, सुद्दा बन गया उसके पेट में, हकीम की इस्तलाह में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सुद्दा का। आंतों में जब फासिद मादा फंस जाता है और वो फंस कर रोक बन जाता है तो उसको सुद्दा कहा जाता है, ये उर्दू का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है सुद्दा, तो सुद्दा बन गया है इसलिए उसका मतलब मैदा जो है वो हजम नहीं करता चीजों को ना, सुद्दा। सिदाद मसाले को भी कहते हैं सिदाद, जैसे आप घर की तामीर कर रहे हैं तो सिदाद क्या मानिए इसके, ऐसा मसाला जिससे सुराख शगाफ रखने पुर किए जाए है ना। तो बहरहाल अब सद क्या है, पत्थर से सुराख बंद करना, तो है तो दीवार ही ना। और अभी आप में से एक ने सुअर लफ्ज भी बोला, हाँ सौर, शाबाश, और वो भी सूरत, शुरू में आपको मैंने बताया था सूरत के मानी वो भी दीवार के हैं है ना, तो कंगन के लिए भी आया, शाबाश, कंगन ही याद रखें क्योंकि औरतें, औरतों के कंगन और फिर वो असाविरा, असाविरा तम मिन ज़हब, सोने के कंगन, और मिन फिद्दा चांदी के भी होंगे, आप फिक्र ना करें। तो सीन व रा जो है ऊंची और बुलंद दीवार को कहते हैं जिसे फांद कर अंदर दाखिल ना हुआ जाए, किसी भी अहाते की किसी भी जो है वो बुलंद जो कोई जगह है मकान है उसकी ऐसी ऊंची और बुलंद दीवार जिसे कोई फांद ना सके, है ना। तो जिदार भी हो गया और सद भी हो गया और सूर भी हो गया और इसी तरह बुनियान भी, ऐसी दीवार या तामीर जिसके अज्जा मजबूती में आपस में फंसे हुए हों। इसी तरह एक और लफ्ज है रद्म का, रा दाल और मीम। ये लफ्ज आप जो है वो आगे ही पढ़ रही हैं आयत 95 में, रद्मा रद्मा। तो रद्म जो है ऐसी सद को कहते हैं जिसके सब के सब रखने अच्छी तरह बंद कर दिए हों। हाँ, तो गोया के रद्म जो है ये सद से भी खास है। अब यानी गोया के दीवार ही है तो पहला दर्जा जिदार है, ये आम दीवार के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा सद है रोक और आड़, बड़ी सी दीवार जो रोक का काम दे। तीसरा दर्जा रद्म का है, मजबूत रोक या दीवार जिसके जिसके अंदर कोई सुराग और शिगाफ ना हो, सब अच्छी तरह जो है वो बंद हो, है ना। जैसे कपड़े में पैबंद लगाना उसके लिए भी आता है रद्म सौब। और चौथा दर्जा है सूर का, ऊंची लंबी फसील के उसको कोई क्रॉस भी ना कर सके। और पांचवा है बुनियाद, तामीर इमारत, है ना। तो ऐसी दीवार या तामीर जिसके अज्जा मजबूती में आपस में दूसरे से फंसे हुए हों। तो दीवार के लिए कुरान में पांच लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और पांचों ही आपको जो है माशाल्लाह अब आते हैं, आप पढ़ चुकी हैं और अब ये आपको आने चाहिए कि इन सब में जो है वो फर्क क्या है। फिर इसके बाद है आयत नंबर 94 और इसमें है याजूज माजूज। इसका रूट वर्ड है हमजा जीम जीम और उजाज, मिलहुन उजाज, है ना, पानी की किस्म का कड़वा नमक वगैरह जिसमें हो। तो ये याजूज और माजूज इसका रूट है, इसका मादा है, याजूज और माजूज दोनों का यही मादा है। फिर आयत 95 पे आप आ जाए रदमा, ये मैंने आपको बता ही दिया, मजबूत दीवार। फिर आप जो हैं आयत 95 में रदमा से पहले फाइनूनी, क्या रूट वर्ड है इसका, आयन या नून, क्या मतलब आयन या नून नहीं, आयन वाओ नून, मदद करो मेरी, नस्ताइनू, आयन वाओ नून, नस्ताइनू। आपने सूरत फातिहा में पढ़ा था ना, आन आवान, नस्ताइनू मदद, है ना, हम मदद, हम जो है वो आपसे मदद मांगते हैं। फिर है आयत 96 में दोबारा जा बारा, टुकड़े को कहते हैं और तख्ता किताब और दीवार के लिए भी, ये किताब के लिए भी आता है, दीवार नहीं किताब, जबूर को भी कहा जाता है ना, ये उसका भी यही रूट है। तो हदीद हा दाल दाल, ये लोहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, है ना। सावा सीन मोया, सदफेन स्वाद दालफा, और सदफ लफ्ज जो है ये इसके अगर साथ अन आ जाए तो फिर ना। और सदफ लफ्ज जो है असल में पहाड़ के किनारे को भी कहते हैं, सीप को भी कहते हैं, है ना, ऊंट की टांगों में जो कजी होती है उसको भी कहते हैं। जैसे अब आप देखें, मैं ये गौर कर रही थी कि सदफ में और पहाड़ के किनारे में रिजेंबलेंस क्या है। जो पहाड़ होते हैं ना, जैसे उनकी जो किनारे की सख्ती है, इसी तरह सदफ में भी सख्ती पाई जाती है। और बाज़ औक़ात पहाड़ों के अंदर जो है वो वादियां होती हैं ना, नाले होते हैं, तो जो सदफ होती है उसके अंदर भी एक खला पाया जाता है ना। तो बहरहाल टांगों के टेढ़पन, पहाड़ और सीप की सख्ती के एतबार से ये लफ्ज जो है कि कोई सख्ती से एराज कर ले, शिद्दत एराज के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बेनस सदाफेने, तो बेनस सदाफेने जो है इससे मुराद क्या है कि किनारा, दो किनारे, गोया के दो पहाड़ जो हैं उनका जो दरमियानी खला है, उसके लिए ये आया है, सावा बेन सदफैन, तो दोनों पहाड़ों का दरमियान, है ना। तो सदफैन यहाँ पे पहाड़ के लिए आया है, सदफ के माने क्या है, पहाड़ के, लेकिन कभी सीप के भी आते हैं, कभी ऊंट की टांगों में जो कजी होती है उसके भी आते हैं। खैर, फिर है पितरा, पितरा पड़ी चुकी, काफ कोयरा, तांबे को कहते हैं, किनारे के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कुतर। और फिर इसके बाद है नकबा, नून काफ बा, आयत 97 के आखिर में है नकबा, इसके मानिए दीवार में सुराख करना, किसी कौम के सरदार को भी नकीब कहते हैं। और मैं गौर कर रही थी कि नकब दीवार में सुराख करना और नकीब तो सरदार है, तो फिर गोया कि वो सुराख करता रहता है, क्या मानी हुए इसके। तो रिसेमलेस क्या है इसमें, क्योंकि नकीब जो है वो किसी कौम के हालात जानता है, तफ्तीश करता है, सुराख नहीं करते तो आप अंदर जाते हैं, तो तफ्तीश और तहकीक करके उस कौम, उसको सरदार को कौम के हालात पता होते हैं, वो गवाह होता है नकीब। कुरान में नकीब लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और फिर है दक्का, दाल काफ काफ, चूरा चूरा करना, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, बराबर कर देना। वजा रब्बू का वल मलकु सफन सफा वजी जहन्नम, तो इससे पहले क्या आता है
दक्कन
ना, सूरत फजर में अल्लाह ताला ये कहते हैं ना, हाँ, कि जमीन जो है उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कि दक्कन दक्का है, कल्ला इजा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, वकान वादु रब्बी हक, हक सच के लिए आता है।
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا